दिन भर आज है 29 जुलाई दिन सोमवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। सड़क हादसे में घायल उन्नाव रेप पीड़िता और वकील की हालत गंभीर।
फांसा नहीं हुआ सर, मरवाया गया है। नवीन सिंह ने धमकी दी थी अतुल और उनके बेटा हरपाल के।
पुलिस ने कहा हम सीबीआई जांच के लिए तैयार।
सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, उनकी मांग करते हैं, तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
कर्नाटक में येदियुरप्पा ने आसानी से सिद्ध किया बहुमत और अभद्र टिप्पणी को लेकर आजम खान से दो बार मंगवाई गई माफी।
अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के साथ हुए हादसे के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने परिवार की शिकायत पर भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और कई अन्य लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। रायबरेली के पास हुए रविवार को एक ट्रक की टक्कर में हुए हादसे में पीड़िता की चाची और एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता गंभीर हालत में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती है। इस हादसे में लड़की का केस लड़ रहे वकील भी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर नाबालिग युवती से बलात्कार के आरोप में पिछले एक साल से जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस हादसे पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने पूछा है कि आरोपी विधायक अभी तक बीजेपी में क्यों हैं? भारत में बाघों की संख्या बढ़ गई है। ताजा गिनती के मुताबिक देश के जंगलों में इस समय करीब 3,000 बाघ हैं। 2006 में ये संख्या 1411 थी, यानी बीते एक दशक में बाघों की संख्या लगभग दोगुना हुई है। ये गिनती छिपे हुए कैमरों से ली गई हजारों तस्वीरों के आधार पर की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संरक्षण के प्रयासों का दायरा और बढ़ाया जाएगा। आज़ादी के समय भारत में करीब 40,000 बाघ थे, लेकिन शिकार और जंगली इलाके कम होने की वजह से उनकी संख्या लगातार गिरती गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जंगलों में फिल्माए गए एक रोमांचक टीवी कार्यक्रम में दिखेंगे। टीवी पर जोखिम भरे कार्यक्रम करने वाले बियर ग्रिल्स के साथ नरेंद्र मोदी के शो की खबर के बाद से सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है। हाल ही में दूसरा चुनाव जीतने वाले मोदी अपने आप को एक ऊर्जावान कर्मठ व्यक्ति के तौर पर पेश करते रहे हैं। बहुत से लोग जहां उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं अन्य उनकी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए उन पर स्वयं का प्रमोशन करने का आरोप लगा रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले महीने डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित होगा। रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नवाल्नी को मॉस्को के अस्पताल से जेल ले जाया जा रहा है, हालांकि उनके डॉक्टरों को इस पर एतराज है। डॉक्टरों को शक है कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है। नवाल्नी के चेहरे, गर्दन, सीने और कलाइयों पर पड़े चकत्तों के बाद सप्ताहांत में अस्पताल लाया गया था। उनकी निजी डॉक्टर ने पत्रकारों से कहा है कि उनकी हालत में सुधार हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ एलर्जी नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर अनास्तासिया वासिलियेवा ने कहा कि यह निश्चित तौर पर किसी रसायन के बाद हुए जहरीला रिएक्शन था। जो लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो बेकार में प्रयास कर रहे हैं। वो डरे हुए नहीं हैं और ना ही वो डरेंगे। वो शायद उन्हें धमकाना चाहते हैं, लेकिन वो नाकाम होंगे। ये थे विपक्षी नेता नावाल्नी की डॉक्टर के शब्द। चीन ने हांगकांग में जारी प्रदर्शनों के लिए उग्रवादी तत्वों और पश्चिम के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। चीन ने इन पश्चिमी लोगों को गैर जिम्मेदार बताया है। चीन ने इस स्वायत्त क्षेत्र में सीधे सेना के दखल से तो इनकार किया है, लेकिन कहा है कि वह हांगकांग के नेता कैरी लेम का मजबूती से समर्थन करता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियुंग ने पश्चिमी देशों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, कुछ समय से ये सच बात है कि अमेरिका और यूरोप में रह रहे कुछ लोग हांगकांग के हिंसक लोगों को बचा रहे हैं और उनकी हिंसा पर आंखें मूंद ली हैं। लेकिन अगर उनके अपने देश के हिंसक लोगों की बात की जाए तो यूरोप और अमेरिका में पुलिस कभी इतनी नरम दिल नहीं रही है। ये दोहरा मापदंड है। बीबीसी समाचार।
आज है 29 जुलाई सोमवार। दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी की वेबसाइट और ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव के बहुचर्चित रेप केस की पीड़िता जिस कार हादसे में गंभीर रूप से घायल होकर लखनऊ में मौत से जूझ रही है, वो हादसा था या हमला, ये सवाल आज दिन भर गूंजता रहा और उस पर जांच शुरू हो गई है। उन्नाव गैंगरेप कांड के मुख्य अभियुक्त बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर समेत 10 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है। FIR जेल में बंद पीड़िता के चाचा ने लिखवाई है, जिनसे मिलने कल पीड़िता, उनकी मां, दो अन्य महिला रिश्तेदार और उनका वकील कार से रायबरेली जा रहे थे, जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। पुलिस शुरुआती तौर पर इसे सड़क हादसा बता रही है। उत्तर प्रदेश के बाद में लखनऊ रेंज के ADG राजीव कृष्ण ने बताया कि इस हादसे के पीछे कुलदीप सेंगर का हाथ होने के आरोप की जांच की जा रही है।
न केवल इस घटना के रिक्रिएशन की कार्रवाई चल रही है, जो ड्राइवर ने और उसके मालिक ने बातें बताई हैं उसके वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है, बल्कि जो भी उन्होंने बात FIR में लिखी है उन FIR के सभी तथ्यों की जांच भी चल रही है। उसके तहत इन तीनों लोगों के ड्राइवर, क्लीनर, मालिक के नंबर्स और जो भी नोन नंबर्स हैं कुलदीप सिंह सेगर और उसके एसोसिएट्स के, उनका भी मिलान कराया जा रहा है।
ये थे लखनऊ रेंज के ADG राजीव कृष्ण। और पीड़िता और कार चला रहे उनके वकील का इस समय लखनऊ में इलाज चल रहा है। BBC संवाददाता समीरात्मज मिश्र को वहां अस्पताल में पीड़िता की मां ने बताया कि उन्हें धमकियां दी जा रही थी।
कहते से सुलह हो जाओ नहीं तुमको मार देंगे, जैसे एक बार धमकी देते थे इनके पापा के आगे तो वो मार दिया उसको, और यही तो ना कहते उसको तो सजा हो गई, अभी हम जेल जाए तो लटके तो हम देखे। हमारे घर पुलिस वाले लंच करते थे, वो लोग नहीं देख पाए, इधर से चौरे में चढ़ के आ गए, जब हम सर को घुराए तो सर लोग बाहर किया। मैंने लड़की ने वीडियो भी बना लिया, लड़की के बारे मानी और जो इनके ही खत्म में हमारे पति दोनों लोगों की गवाह थी, मौसी भी गवाह थी।
पीड़िता की माँ और वहाँ पीड़िता की बहन भी थी, जिन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये हादसा नहीं हमला था।
हादसा नहीं हुआ सर, मरवाया गया है। नवीन सिंह ने धमकी दी थी अतुल और उनके बेटा हरपाल के, अभी तो तेरे चाचा को लटकाया, अभी तो जो अभी तो अंदर की अभी तो लटकाना बाकी है, ये केस वापस ले ले कोर्ट में, ये बयान ये जो धमकाया था जब प्रशासन नहीं थी, कहीं गई थी चाय लाने कुछ लाने गई थी, कहीं तुम बैठो तुम बाहर नहीं जा सकते हो, चाचा को झूठे मुकदमे लगा के जेल का रहा देन, अब मेरे घर में कोई नहीं ना कमाने वाला, लेकिन इस सरकार को नहीं दिखा सर।
पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है, मगर पत्रकारों को अस्पताल के भीतर जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज अस्पताल गईं और कैसी है पीड़िता की हालत, ये जानने के लिए मैंने स्वाति मालीवाल से बात की।
लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है, उसकी हेड में इंजरी हुई है और बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और अभी तक उसको होश नहीं आया है, वो वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा है कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो बच पाएगी, और जो उनके वकील हैं उनकी इससे भी ज्यादा बुरी हालत है, वो इनसे भी ज्यादा सिवियरली अफेक्टेड है। जो उनकी चाची है और चाची की बहन है, वो दोनों की दोनों ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी।
आपने वहाँ डॉक्टरों से बात की कि आगे और कुछ अगर किया जा सकता हो उनकी बेहतरी के लिए?
डॉक्टर्स सबसे यही बातचीत चल रही है और पेरेंट्स से भी यही बातचीत चल रही है, फैमिली मेंबर्स से भी यही बातचीत चल रही है, सबका ये मानना है कि लड़की को तुरंत एयरलिफ्ट करना चाहिए, इमीडिएटली हमें उस लड़की को दिल्ली शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि दो कारण है। एक तो ये हम सब मानते हैं कि दिल्ली का जो ट्रीटमेंट होगा वो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, जितना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आज ये अभी है, साथ ही क्योंकि कुलदीप सेंगर अभी भी यहाँ पे MLA है और अभी भी उनका इतना बड़ा क्लाउट है कि अभी तक सरकार ने इस केस में कोई एक्शन नहीं लिया है, उनकी जान को उनसे भी अभी डायरेक्ट खतरा है, तो इसी कारण से हमें UP सरकार से अपील कर रहे हैं कि तुरंत इस एयरलिफ्टिंग में हमारी मदद कीजिए, लड़की को एयरलिफ्ट कराइए, और साथ में वहाँ पे दिल्ली में मैंने बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल से बात कर ली है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़की का ट्रीटमेंट करेंगे।
कई लोगों के मन में आ रहा है कि ये घटना जो है उन्नाव की है, उत्तर प्रदेश की है, और स्वाति मालीवाल वहाँ क्या कर रही हैं?
मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि मैं पहली गवर्नमेंट एजेंसी हूँ और तब से अब तक पहली ही गवर्नमेंट एजेंसी हूँ जो यहाँ पे आई है। यूपी सरकार, जबकि लखनऊ में पूरा यूपी सरकार बैठती है, उनके किसी भी ऑफिसर ने इतनी जहमत नहीं उठाई। और मंत्री तो छोड़ ही दीजिए और मुख्यमंत्री से तो बात ही करने की बात नहीं है, जो आए और लड़की से मिले। आप ये पूछ रहे हैं कि मैं क्यों इसमें इंटरवीन कर रही हूँ, दो कारण है मैं क्यों इंटरवीन कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं कल रात अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाई, पूरी रात मैं सो ही नहीं पाई जब मैंने ये देखा कि एक एक करके उस लड़की को पूरी तरीके से मार दिया, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया। क्योंकि ये कोई एक लड़की का केस नहीं है, ये कोई यूपी और दिल्ली का केस नहीं है। अगर एक रेप सर्वाइवर के साथ इस तरीके की हरकत देश के किसी भी कोने में होती है तो उसकी गूंज पूरे देश में होती है। आज की स्थिति ये है कि अगर ये कुलदीप सेंगर बच गया और अगर ये लड़की मर गई तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा तमाचा है देश की सारी निर्भयाओं पर, और वो हमें हर हाल में हर कॉस्ट पे अवॉइड करना चाहिए। सो आई एम हियर एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई एम हियर एज समबडी हु इज फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस इशू कि कभी तो समथिंग हैज टू स्टॉप, ऑल दिस हैज टू स्टॉप। That is why I'm here. And the other question is, where are the other commissions? अगर बाकी लोग काम कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दिल्ली से अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आज लखनऊ में यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे होते।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। और अब लखनऊ से बीबीसी संवाददाता समीर आत्मज मिश्र हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। समीर, ये मामला योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़ा सिर दर्द का रूप लेता जा रहा है।
जी अपूर्व, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये मामला जब आया था, जानकारी में आया था 2017 में, या ये कहिए कि पिछले साल खास तौर पे, जबकि ये कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप लगाया था और लड़की ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, उसके ठीक एक दिन के बाद उसके पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इसमें सीधे हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और जांच सीबीआई को सौंपी गई, तो सीबीआई ने जाकर के बाद में इनकी गिरफ्तारी की। शुरू से ही इस पूरे प्रकरण में योगी सरकार इसमें घिरी हुई नजर आ रही है। हालांकि उस समय योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि किसी भी कीमत पर दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक की जो पूरी कार्रवाई इसमें चल रही है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से जो दोषी है या जो अपराधी है जिन्होंने ये किया होगा उनके भीतर किसी तरह का कोई डर हो। जो आरोप पीड़ित की मां ने लगाए, बहुत सारी बातें उन्होंने मीडिया से की और उनकी जो एक भतीजी थी, कुछ एक और रिश्तेदार थे, वो लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं कि लगातार डरे हैं। ज्यादातर समय वो दिल्ली में रहते हैं, उनको सिक्योरिटी जरूर दी गई है, लेकिन सिक्योरिटी हर समय रहेगी कैसे रहेगी? आए दिन लोग आते रहते हैं और धमकाते रहते हैं, किसी न किसी बहाने कोई दूसरे से कहलवाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये, और इसकी बात वो लोग पुलिस से, प्रशासन से कई बार शिकायत कर चुकी है। पीड़ित की मां ने बताया हमें कि वो इस शिकायत को पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनका ये बिल्कुल ये मानना नहीं है कि ये किसी भी तरीके का ये हादसा है। जिस तरीके की इसमें समीकरण बन रहे हैं, दिख रहे हैं, वो ये कह रही है कि इसके पीछे निश्चित तौर पर साजिश है, और सीधे तौर पर वो विधायक का और विधायक के लोगों का नाम ले रही है। निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार के लिए एक
बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और विपक्ष के लिए भी एक तरह से हाथ में बड़ा मुद्दा आ गया था। मैं देख रहा था अखिलेश यादव ने विधानसभा में भी काफी इस पे कहा, मायावती बोल चुकी हैं, प्रियंका, राहुल सब ट्वीट कर रहे हैं। एक तरह से
सारे दिन अस्पताल में पूरा जमावड़ा भी लगा रहा लोगों का, हालांकि एक से लोग मिल नहीं पाए, लेकिन उनकी माँ से राजनीतिक दल के नेताओं ने मुलाकात की, दूसरे लोगों ने मुलाकात की, और लगातार ट्विटर पर और सारे प्लेटफॉर्म पे लोग इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं।
जी समीर, आपसे आगे भी हम लोग चर्चा रखेंगे अगले कार्यक्रमों में। संक्षेप में बताएं, योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है
अभी तक? तो इस बारे में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है, और अब देखना यह है कि कल उनका परिजन शव अपना लेकर के अपने गांव जाते हैं, तब तक हो सकता है उनका कोई बयान आए। फिलहाल तो आज नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण में ही सारे लोग व्यस्त थे और
जी,
तो आपने देखा।
सही बात, सही जी। बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र। और अब रुख कर्नाटक का, जहां मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने आखिरकार आज वो विश्वास मत हासिल कर लिया जिसे हासिल करने की कोशिश उन्होंने 14 महीने पहले भी की थी और नाकाम रहे थे, मगर आज आंकड़े उनके लिए इतने पक्ष में थे कि कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने इस पर मतदान करवाने की भी मांग नहीं की। इधर येदियुरप्पा ने विश्वास मत जीता उधर स्पीकर ने बिना किसी के कुछ कहे खुद ही सदन में इस्तीफा दे दिया। पूरे ब्यौरे के साथ बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
आखिरकार मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा ने विश्वास मत हवा की तरह जीत ही लिया। 14 महीनों पहले वो विश्वास मत लेने से पहले ही विधानसभा से निकल गए थे और राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया था। आज परिस्थिति अलग ही थी। जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस का गठबंधन काफी कमजोर हो गया था 17 विधायकों के इस्तीफों के बाद और उनको अयोग्य घोषित करने के बाद। विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस के सिद्धरामैया और जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी ने बात की और दोनों ने स्पीकर से गुजारिश की कि येडियुरप्पा के प्रस्ताव को पारित करें।
सचिव संपुटद विश्वास व्यक्तपड़े प्रस्ताव अंगीक प्रस्ताव परवा हाउस सूची प्रस्ताव
पहले बी एस येडियुरप्पा कहते हैं कि विधानसभा उनके विश्वास मत के प्रस्ताव को समर्थन दे। फिर स्पीकर रमेश कुमार ने कहा पहले ध्वनि मत लिया जाएगा, जो प्रस्ताव के समर्थन में है वो हाँ बोले। उसका जवाब मिलते ही स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि जो प्रस्ताव के खिलाफ है वो ना बोले। जब किसी ने विपक्ष से गिनती नहीं मांगी तो स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि प्रस्ताव को पारित किया गया है। ये थे बी एस येडियुरप्पा और स्पीकर रमेश कुमार के शब्द। विश्वास मत पारित होते ही फाइनेंस बिल लिया गया और वो भी थोड़ी बहस के बाद पारित हो गया। इसके फौरन बाद स्पीकर रमेश कुमार ने लंबा भाषण दिया और कहा
नॉमिनेशन
चुनाव में नामांकन पत्र दर्ज करने से पहले आय संपत्ति का खुलासा करना पड़ता है, लेकिन एक और चुनाव में कोई ये नहीं पूछता है कि आपकी आमदनी कैसे बढ़ी। इस तरह के विषयों पर राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए। मैं अब स्पीकर के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये थे रमेश कुमार के शब्द। अब जो विश्वास मत जीत लिए हैं अभी हर किसी का फोकस मंत्रिमंडल विस्तार पर हो गया है। जब यह सवाल बीजेपी के पूर्व कानून मंत्री सुरेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी हमारे केंद्र और राज्य के नेता बैठक करेंगे और मंत्रालय का गठन करेंगे, शायद इस हफ्ते भी हो सकता है। ये थे सुरेश कुमार के शब्द। मंत्रिमंडल का गठन करने से पहले बीजेपी के राज्य और केंद्र के नेता सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे उस याचिका पर जो अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने दर्ज की है। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों ने स्पीकर रमेश कुमार के आदेश पर रोक लगाने के लिए दरखास्त की है। अगर स्पीकर के आदेशों पर रोक लगा दी गई तो अयोग्य घोषित किए गए विधायकों को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
पिछले सप्ताह लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने बीजेपी सांसद रमा देवी पर जो टिप्पणी की थी उस पर बड़ा हंगामा मचा था। रमा देवी तब सदन का संचालन कर रही थी। आज फिर यह मुद्दा उठा और इसे लेकर आजम खान को दो दो बार माफी मांगनी पड़ी। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनसे माफी मांगने का अनुरोध किया, जिसे आजम खान ने मान लिया।
मैं दो बार संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, चार बार मंत्री रहा हूं, नौ बार विधायक रहा हूं, राज्यसभा सदस्य रहा हूं। मेरे भाषण मेरे आचरण को पूरा सदन जानता है। इसके बावजूद भी अगर चेयर को मेरे प्रति ऐसा लगता है कि मुझसे कोई भावना में गलती हुई है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूं।
मगर कुछ सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और उनसे दोबारा माफी मांगने के लिए कहा। तब आजम खान के बगल में बैठे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हस्तक्षेप किया।
कि उन्होंने कहा है क्योंकि हो सकता है माननीय सदस्य ने कान में नहीं लगाया। अब देखिए स्पीकर साहब भाषा देखिए।
मगर रमा देवी आक्रामक होती गई, जिसके बाद अध्यक्ष ने आजम खान से दोबारा माफी मांगने के लिए कहा।
आजम खान जी एक बार आप इसे दोबारा रख दें।
नहीं कह चुके हैं
एक बार। मैंने पहले भी कहा था हमारी बहन समान है। बात को एक बार कहें या एक हजार बार कहें बात वही रहेगी। मैंने कहा कि चेयर के लिए कोई भावना ऐसी हो जो एक सदस्य की गलत हो संभव नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा था कि जाहिर है अगर फिर भी कोई एहसास है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ।
ठीक।
हालांकि बिहार की शिवहर सीट से सांसद रमा देवी की नाराजगी दूर नहीं हुई।
जो चीज बोले, जो कुर्सी पर मैं बैठी हुई थी वो अध्यक्ष और सभापति की कुर्सी है, पूरा हिंदुस्तान देखती है और पूरा हिंदुस्तान की महिला पुरुष सब को तकलीफ पहुंचा है और इतना तकलीफ पहुंचा है कि इसका जो महत्व है इनको समझ में नहीं आएगा। काहे कि ये बाहर भी इसी तरह का ही बोलते रहे, इनकी आदत जो बिगड़ी हुई है वो जरूरत से ज्यादा बिगड़ी हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आजम खान जी के, सुनिए अखिलेश जी, उनका मुंह में जवान है, उसे बोलने के लिए जवान था, आप क्यों बोल रहे हैं, आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? खबरदार, आप अगर बोलिएगा नहीं बोल, आप नहीं, मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ।
मगर इस तमाम नाराजगी, हंगामे और माफी मांगने के बाद आखिरकार स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अब इस प्रकरण को समाप्त कर आगे बढ़ना चाहिए।
कोई भी ऐसा शब्द जिससे हमारी संसद की मर्यादा, छवि खराब हो, ऐसा हमें कभी भी कोई कृत्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो क्षमा मांगी, सभी दलों ने जो निर्णय किया उसके हिसाब से ऐसी कभी भविष्य में कोई माननीय सदस्य न करे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।
आजम खान से माफी मंगवाने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आज मेरे साथ हैं सूर्यांशी पांडे।
नमस्कार।
तो सूर्यांशी, चिट्ठियां मैं देख रहा हूं आपके हाथ में और हमारे श्रोताओं को इंतजार होगा कि उनकी कौन सी चिट्ठी हमने आज इस्तेमाल की है।
बिल्कुल,
तो जल्दी से शुरू हो जाइए।
हाँ, तो पीले खत में सबसे पहला खत हम ले रहे हैं ऋषिकेश गुप्त का, जो लिख रहे हैं वाराणसी से, गाजीपुर से लिख रहे हैं। और ये कहते हैं कि देश का चर्चित केस कुलभूषण जाधव मामले पर की गई जमीनी रिपोर्ट सुनकर उन्हें भारत की कूटनीतिक शक्ति का पता चला और इसका बहुत शुक्रिया वो कर रहे हैं बीबीसी का। साथ ही साथ बिहार बाढ़ पर वो दुष्यंत कुमार की एक कविता की पंक्तियां जो है यहाँ पर उन्होंने लिखी है।
क्या क्या लिखते हैं?
और ये कह रहे हैं बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं
और नदियों के किनारे घर बने हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषिकेश भाई। कुलभूषण जाधव पर हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आई, हालांकि आपकी चिट्ठी आते आते तक लोग उस खबर को भूल भी गए हैं। इस तरह का जमाना है कि खबरें आती हैं और चली जाती हैं, लोगों को याद भी नहीं रहता है क्योंकि सोशल मीडिया है। तो आप चिट्ठी लिखते रहा कीजिए। एक और मैं पीला खत, जिसे आपने कहा पोस्टकार्ड, वो आपके हाथ में देख रहा हूँ।
अगला पोस्टकार्ड जो है वो जयंत कुमार दास ने लिखा है बेलवा कटिहार से, और ये लिखते हैं कि 22 जुलाई के नमस्कार भारत में संवाददाता रवि प्रकाश द्वारा महान मजदूरों के नेता एके रॉय के निधन पर जो रिपोर्ट सुनी वो दिल को काफी छू गई। और उन्होंने कहा कि उनके मजदूरों के संघर्ष के योगदान को लोग हमेशा याद रखेंगे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन अपने आप में एक उदाहरण होता है और वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हों या किसी भी क्षेत्र से आते हों, लेकिन वो समाज के एक व्यापक हिस्से को जब प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है।
अब हम ईमेल की बात करते हैं और ईमेल सबसे पहले है गौतम दत्ता का, किशनगंज बिहार से। ये लिखते हैं कि आज नमस्कार भारत में वात्सल्य राय, आदर्श राठौर, आदेश कुमार गुप्त और वसतुल्ला खान ने मिलकर 28 मिनटों की सभा में जान फूंक दी। और
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज।
और ये कह रहे हैं कि आदेश कुमार गुप्त खेल समाचार अब शायराना अंदाज में पेश कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले स्टूडियो आने से पहले आदेश कुमार गुप्त से मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बताया कि कुछ चिट्ठियां आपकी तारीफ में आई हैं, तो बहुत सकुचाते हुए बोले कि श्रोताओं से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे जो श्रोतागण हैं, जो सजग हैं, वो एकदम गलती पकड़ते हैं और हमें सतर्क होने का मौका दिए बगैर हमारी गलती को वो वापस हम तक पहुँचाते हैं। लेकिन यही जो बात है हमारे श्रोताओं को हमारे करीब रखती है और हमें ये एहसास बार बार दिलाती रहती है कि ऐसा नहीं है कि आपकी गलतियां जो है वो नजरअंदाज कर देंगे लोग। तो आप भी सतर्क रहिएगा, मैं भी सतर्क रहूंगा।
सही बात है। और आगे बढ़े तो रमेश तिवारी लेस्टर से लिखते हैं, यूके से लिखते हैं, 28 जुलाई को दिन भर के दो कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय लगे। इसमें से पहला उन्होंने बोला है कि प्रोफेसर शेखर पाठक जी से की गई वार्ता पहाड़ों में पर्यावरण की स्थिति वास्तव में रोचक लगी, और दूसरे लंबे समय तक फिल्मों की आवाज रहे महान गायक मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर पूर्व संध्या पर पहले से रिकॉर्ड उनका साक्षात्कार।
जी हाँ, वो तो हमारे खजाने का एक ऐसा नायाब हीरा है कि मोहम्मद रफी साहब की जो उनका जो शख्सियत थी, उनकी जो उनका जो व्यक्तित्व था, वो उससे झलकता है। इतना महान आदमी, इतना महान गायक, लेकिन इतना विनम्र, इतना मृदुभाषी, ऐसा लगता है कि कोई सकुचाया हुआ आदमी शहर की भीड़ में कहीं फंस गया हो, इतने विनम्र वो थे। तो आपको कार्यक्रम अच्छा लगा, इंटरव्यू अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। तो और अगला ईमेल आपका कौन सा है?
ये त्रिकुटा नगर जम्मू से लिखते हैं, इनका नाम है प्रमोद सबरवाल, और ये लिखते हैं कि 26 जुलाई के कार्यक्रम में विक्रम बत्रा पर रेहान फजल की विवेचना सुनी। मैं उनके परिवार से कहना चाहूंगा कि हम सब आपके साथ हैं।
इस तरह की और भी बहुत सारी चिट्ठियां आई हैं जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा पर जो रेहान फजल ने विवेचना की उसकी बहुत तारीफ लोगों ने की है, और ये कहा है कि गर्व से हमारा सीना फूल गया।
और ऐसी एक चिट्ठी प्रमिता ने भी भेजी थी गंगादासपुर से, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से।
क्या लिखती हैं?
और उन्होंने कहा था कि मोहम्मद रफी का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, और कारगिल युद्ध में सैनिकों के साहस की जो विवेचना रेहान फजल द्वारा की गई वो बेहद अच्छी लगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमिता जी। आप हमारे कार्यक्रमों पर अगर लगातार चिट्ठियां लिखेंगी, अपनी राय जाहिर करेंगी, आप क्या सुनना चाहती हैं, और आपके आसपास की महिलाएं या आपके कोलीग्स जो हैं वो क्या सुनना चाहती हैं, ये भी अगर हमें आप बताएंगी तो कोशिश करेंगे कि आपकी उस फरमाइश को भी हम पूरा कर सकें।
आगे अगर जाएं तो विवेचना जो विक्रम बत्रा पर की गई थी उसमें दो खत मैं लगातार पढ़ लेती हूँ।
थोड़ा संक्षेप में पढ़िएगा क्योंकि समय कम है।
एक तो भेजा है जसवीर रेडाना ने बाड़मेर से, और ये लिखते हैं कि कारगिल पर विशेष श्रृंखला वास्तव में शानदार है। तो वहीं इलाहाबाद से अनिल शुक्ल लिखते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा पर विवेचना के लिए रेहान फजल का शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल शुक्ला भाई, और हमारे तमाम श्रोता जिन्होंने इस विवेचना की तारीफ में अपनी राय भेजी है। लिखते रहिएगा और हमसे संपर्क में रहिएगा। चलते चलते पता बता देता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट पर, जहां पर रविवार को जापान ओपन समाप्त हुआ। इस मुकाबले में महिला वर्ग में जापान की खिलाड़ी अकानी यामागुची ने खिताब जीता, तो वहीं पुरुष वर्ग में जापान के खिलाड़ी केंटो मोमोटा ने इंडोनेशियन टेनिस प्लेयर जोनाथन क्रिस्टी के खिलाफ मुकाबला जीता। वहीं भारतीय प्रदर्शन की बात करें तो पीवी सिंधु ने महिला वर्ग में क्वार्टर फाइनल तक अपनी जगह बनाकर रखी, तो वहीं किदांबी श्रीकांत सिर्फ पहले राउंड तक पहुंचे, और साई प्रणीत सेमीफाइनल तक तो पहुंचे लेकिन जापान के खिलाड़ी केंटो मोमोटा से हार कर वापस लौटना पड़ा। क्रिकेट के मैदान की ओर अगर आपको लेकर चले तो आज भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबलों के लिए रवाना हो रही है। ये मुकाबले अमरीका में 3 अगस्त से शुरू होंगे, और पहला मुकाबला T20 का मुकाबला होगा जो फ्लोरिडा में खेला जाएगा। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले की अगुवाई वाली क्रिकेट समिति अपनी अगली बैठक में बाउंड्री नियम सहित विश्व कप फाइनल से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेगी। अब तक आईसीसी प्रतियोगिताओं में 2009 से मैच टाई होने की स्थिति में विजेता का फैसला सुपर ओवर के जरिए करता आया है, और अगर सुपर ओवर भी टाई हो जाए तो मैच में लगी बाउंड्री की संख्या से फैसला किया जाता है। इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेले गए विश्व कप फाइनल में ज्यादा बाउंड्री के आधार पर न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं इंग्लैंड की टीम को विश्व कप खिताब हासिल हुआ। मैच टाई रहने के बाद सुपर ओवर का सहारा लिया गया था, लेकिन सुपर ओवर भी टाई हो गया था। ऐसे में आईसीसी की बैठक में सुपर ओवर टाई होने के बाद क्या किया जाए इस पर विचार किया जा सकता है। नियमों में बदलाव होंगे या नहीं ये तो अब वक्त बताएगा।
और खेल से जुड़ी एक और खबर हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर है, वो है विराट कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज दौरे पर निकलने से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप के बाद टीम में दरार आ गई है। पूरा ब्यौरा पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और सभा समापन से पहले एक बार फिर मुख्य समाचार।
उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के साथ हुए हादसे के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने परिवार की शिकायत पर भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और कई अन्य लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया है। भारत में बाघों की संख्या बढ़ गई है। ताज़ा गिनती के मुताबिक देश के जंगलों में इस समय करीब 3,000 बाघ हैं। 2006 में ये संख्या 1411 थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जंगलों में फिल्माए गए एक रोमांचक टीवी कार्यक्रम में दिखेंगे। रूस में विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी को मॉस्को के अस्पताल से जेल ले जाया जा रहा है, हालांकि उनके डॉक्टरों को इस पर ऐतराज है। चीन ने हांगकांग में जारी प्रदर्शनों के लिए उग्रवादी तत्वों और पश्चिम के लोगों को जिम्मेदार ठहराया है।
दिलनवाज पाशा सुना रहे थे मुख्य समाचार। दिन भर में आज इतना ही। आज के कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं अपूर्व कृष्ण विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।